أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. بيشك ولو جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، عصبۃ منکم، وہ تمہارے اندر سے ایک گروپ تھا، تمہارے اندر سے ہی ایک گروپ تھا، لا تحسبوہ شر لکم، لیکن تم لوگ اس تہمت کو تمہارے لیے طوفان کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ کیا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ، اور ان گروہ میں سے ہر شخص نے جتنا گناہ کیا اتنی سزا ملے گی، والذی تولی کبرہ، اور جس شخص نے اس گروپ میں سے اس تہمت کا بیڑا اٹھایا، یعنی جس نے شروعات کی ہے، لہم عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. ویسے میں نے لاسٹ دو ہفتے پر آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی، اور اس میں حضرت صفوان بن معطل پر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی تھی، اس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا، لیکن چونکہ آیات کا وقت کی کمی کی وجہ سے ترجمہ نہ کر سکا، کچھ آیات کو سمجھا نہ سکا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان آیات کو سمجھا دوں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، مجھے تو یقین نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن میں آیات اتارے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، بہت اچھی بات فرمایا، یہ خاندان ابو بکر، یہ تو وہ ہے، خاندان ابو بکر تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خاندان کے لیے وحی کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتا ہے، وحی ہی وحی، کچھ بھی ہو جائے وحی اترتی ہے، اور وحی بھی قرآن میں، حدیث میں نہیں، قرآن میں. خاندان اتنا بڑا ہے، اسی لیے میں نے مثال دی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مستہ کو صدقہ دینے سے منع کیا تو پھر فوراً آیت اتری، ابو بکر تم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تم پر فضل کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، فوراً ایک نہیں 16 آیت اتار دی اللہ پاک، اور پانی نہیں تھا، مسئلہ ہو گیا تیمم کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، اس وقت اللہ پاک نے آیت تیمم اتار دی. صحابہ فرماتے ہیں، بڑا خاندان ہے، اللہ تو ان سے وحی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا ہے، اور وحی بھی ایسی کہ قیامت تک قرآن میں پڑھا جائے گا. صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات پر اللہ نے قرآن میں وحی اتاری، تو وہ یوں سمجھتی ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلا دیں گے اللہ پاک کہ میں سچی ہوں یا جھوٹی ہوں. لیکن کیا کہوں، ابھی تو میں ایسے اٹھ کر کے بیڈ میں بیٹھی کہ اللہ کے نبی وہاں بیٹھے، وہی شروع ہو گئی، وہی ختم ہوئی، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، عائشہ خوش ہو جا، तेरी बरात का तो अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र फरमा दिया, कुरान में। तो फिर हजरत आयशा फरमाती है, अम्मी जान ने कहा आयशा अभी शुक्र शुक्र अदा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कहा नहीं, मैं इनका शुक्र अदा नहीं करूंगी, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि उन्होंने मेरी बरात का इजहार किया। अल्लाह का शुक्र, इसको नाज बोलते हैं। नाज, ये नाज तो वही जानते हैं जो उर्दू अच्छा जानते हैं। नाज किसको कहते हैं? बीवी का नाज होता है बाज़ मर्तबा। इसीलिए हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर जो एक महीने तक उनको पता तक नहीं है कि मेरे बारे में तोहमत चल रही है, इतनी मासूम लड़की, एक महीने तक बाद में पता चला, एक महीने के बाद कि मेरे बारे में मदीना मुनव्वरा में ऐसी तोहमत चल रही है। नबी का घराना, नबी की प्यारी बीवी है। इसीलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं जन्नतुल बकी में जितने सहाबा सोए हुए उनमें सबसे अफजल कौन? मसला छे मुहद्दिसीन तो मुहद्दिसीन होते हैं। जन्नतुल बकी देखा आप लोग, जाएंगे अंदर में तो, अंदर में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां भी है और हजरत हसन भी है, हजरत हुसैन भी है, जाफर सादिक भी है, उसमें आपकी नौ बीवियां भी सोई हुई है, उसमें आपकी फुफियां भी है, उसमें बहुत सारे हजरत उस्मान है, हजरत उस्मान बिन अफान है, उस्मान वो उस्मान है क्या कहते हैं, हजरत हलीमा सादिया भी है और उस्मान इबन मजून भी है। बहुत सारे साहबा, 10,000 साहबा की कब्र है उस। तो मुहद्दिसीन में बात चली कि जन्नतुल बकी में सोने वालों में से सबसे अफजल कौन? तो इब्न हजर अस्कलानी जैसे बड़े बड़े मुहद्दिस फरमाते हैं इस कब्रिस्तान में सबसे अफजल उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला, क्यों? उनके लिए कुरान की आयतें उतरी है, उनके लिए कुरान की आयतें उतरी है। अगरचे बाज़े मुहद्दिसीन फरमाते हैं, इब्न कईम जैसे फरमाते हैं इस कब्रिस्तान में दर्जा अब हजरत अब्बास का है, क्योंकि अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे चचा थे। उसमें कब्र है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की दाहिनी तरफ में। बाज़े मुहद्दिसीन फरमाते हैं उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का दर्जा बहुत बड़ा है, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा में सहाबा में 7 मुफ्ती थे सहाबा के जमाने में, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर सीरी जमाने में, जो फुकहा जिसको कहते हैं ना, बड़ी मुफ्तियों की जमात, उसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद थे वहां सबसे बड़े मुफ्ती। इसलिए वजह से फुकहा फरमाते हैं इनका दर्जा बहुत बड़ा, ये सारे सहाबा में अफजल है वहां कब्रिस्तान। बाज़े मुहद्दिसीन फरमाते हैं उस्मान गनी रजी अल्लाह, उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसलिए कि वो खिलाफत राशिदा तीसरे नंबर के खलीफा है, उनका भी जिक्र है। लेकिन ज्यादातर वजन की बात इब्न हजर ने बयान फरमाई, चूंकि हजरत उम्मुल मोमिनीन के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी और ये मुहद्दिसा थी, 2000 हदीसें इनसे साबित है और इनके बारे में कुरान ने बरात उतारी है और कोई ऐसा नहीं जिनके बारे में बरात उतारी हो। एक औरत हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, समझे मेरी बात? यहां अल्लाह पाक ने देखो कैसी बातें बयान फरमाई, अल्फाज भी अजीब अजीब। इन्नल्लज़ीन जाऊ बिल इफ्क, इफ्क के माना है झूठ का तूफान, कि पूरे मदीने मुनव्वरा में 4 जमात हो गई। कितनी जमात? उसबतुल मिनकुम, 4 जमातें। एक जमात वो है जिन्होंने तोहमत लगाई, दूसरी जमात वो है वो तोहमत वाली बात में फंस गए, सच मान लिया। तीसरी जमात वो है जो ना हां कहा ना कहा, खामोश। अगर ये चार आप समझोगे तो कुरान की आयत समझ में आ जाएगी सारी। और चौथा जो है वो सहाबा जो खुलेआम कहते थे ये हादा सुबहान का हादा हादा बुहतान नजीर, झूठ है झूठ है। चार ग्रुप तो मेरी बात सुनना आती है, ऐसी तफसीर जो जहन में बैठ जाए आपको। एक तो वो ग्रुप है जिन्होंने बस तोहमत ही लगा दी जिसका जिक्र यहां। दूसरा ग्रुप वो है जो इनके साथ सिंपल सादा थे लेकिन फंस गए सुन करके। और नंबर तीन पर वो लोग हैं जो खामोश रहे, साहबा बोले ही नहीं, ना 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 खामोश। और चौथे वो है कि साहबा परेशान है अपने नबी की घरवाली के लिए और जो भी कहता है खामोश झूठ कह देते थे। इन चारों का जिक्र अल्लाह पाक इन आयतों में फरमाते हैं। अब देखिएगा बहुत अजीब अंदाज में, ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم। ये कहा जा रहा है कि ओ मेरे सहाबाओं जो परेशान हैं, परेशान हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला को पूछा, हजरत बरीरा रजी अल्लाह तआला को पूछा, तीन चार लोगों से पूछा उम्मुल मोमिनीन के बारे में क्या ख्याल है जो मैंने तफसील से बयान किया। ला तहसबुल्ला कह रहे हैं परेशान ना हो, ये हो गया ना उसमें भी हजरत आयशा की बरात तुम्हारे सामने आ जाएगी। पता चले कि इसलिए कि इस वाक्य से पता चल गया सही कौन गलत कौन है। ला तहसबुहु शर्रत, अल्लाह को भी अपने नबी की बीवी के दर्जे को बुलंद करना, बुलंद करना था। और कैसा बुलंद किया, कयामत तक। और फिर वो जन्नत में चढ़ता जा पढ़ता जा, पढ़ता जा चढ़ता जा, वो भी पढ़ेगा इसको, इन आयतों को वो भी पढ़ेगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तलावत, फिर अल्लाह कुरान की तलावत, कितनी बरा थी। कुरान की आयतें उतारना किसी के लिए बहुत बड़ी बात है, और वो भी एक नहीं, अल्लाह कह देते छोटा सा जुमला, नहीं आयशा ठीक तुम उनका गलती नहीं है गलत है, लेकिन 16 आयत उतार दी, वो एक रुकू उतार दिया बरात में 16 आयत्स। और अल्लाह ने फैसला कर दिया लिकुल इमरिम, जिसने जितना हिस्सा लिया है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पर तोहमत लगाने में इतनी सजा होगी। और दुनिया की सजा है, दुनिया नहीं तो आखिरत की सजा, तोहमत की सजा दुनिया में। और दुनिया में क्या सजा है, इमाम बगवी फरमाते तफसीर बगवी में फरमाया कि उन लोगों को 80 कोरे मारे गए। कितने भाई, 80 कोरे मारे गए। हां उसमें लोग अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन एक ग्रुप है, अब्दुल्ला इब्ने उबई और जैद इब्ने रिफा ये मुनाफिकीन में से है। और दूसरा ग्रुप मिस्ता इब्ने असासा और हसान इब्ने साबित और हजरत जैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया उनकी बहन हजरत हमना बिनत जहश, ये तीनों भी हदीस में आता है कि इनकी बात में फंस गए। सिंपल लोग, सादे लोग, बात में फंस गए, बात मान ली। इसीलिए बहुत सोच समझकर किसी पर तोहमत लगाने से पहले हजार बार सोचो जब तक तुम्हारे पास कोई प्रूफ ना हो, बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया दो मुनाफिक है बाकी मुसलमान है, और उसके अलावा बहुत सारे खामोश रहे, बहुत सारों ने इनकार कर दिया कि झूठ है। तो चार जमातें हैं, अल्लाह फरमाते हैं लिकुल इमरिम मिनहुम मक्तसब मिन अल इस्म वल्लजी तवल्ला किबरहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, लेकिन जो उसमें सर बड़ा है जिसने इस तरह तोहमत डाली है उसका तो दर्दनाक अजाब कयामत के दिन है ही, और वो है मुनाफिकी, जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत डाली। लौला इद समितुमूहु, लौला इद समितुमूहु, देखो ये कह रहे अल्लाह, जब तुम लोगों ने उसको सुना तो मोमिनीन मोमिनात के बारे में तुमने अच्छा गुमान क्यों नहीं किया। जन्नल मोमिनून वल मोमिनात बे अनफुसिहिम खैरा की दो तफसीर है, बे अनफुसिहिम खैरा की एक तफसीर यह है ये तुम्हारे हैं ईमान वाले, क्या है तुम्हारे हैं, अगर उन पर कोई तोहमत लगी तो आपको उसका डिफेंस करना चाहिए था, यानी उनके बारे में अच्छा गुमान करते बजाय तुम अच्छा गुमान करके उनके साथ यानी दुश्मन के साथ फंस गए। यह एक तफसीर तो अनफुसिकुम खैरा, वो तुम्हारे अंदर ही से है, तो उनके बारे में मोमिनीन मोमिनात, ये तो जनरल हुक्म, यहां तो उम्मुल मोमिनीन का जिक्र है, आम मोमिनों पर भी तोहमत लगाने पर यही गुना है। हदीस में आता है जब किसी पर कोई तोहमत लगाता है ना तो कयामत के दिन अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक लोगों के सामने अल्लाह उसको बुलाएगा और सबके सामने उसको जलील करेगा। ये गुना है तोहमत लगाने वाले का, आसान है आज तो अल्लाह खुद कहे कि तुम्हारे लिए तो आसान है। देखिए एक तफसीर तो यह हो गई कि मोमिनीन मोमिनों चाहिए कि मोमिनात को चाहिए कि वो अपने ही के साथ अच्छा गुमान रखते बजाय तुम अच्छा गुमान रखने के, और यहां तो अच्छा गुमान किसके साथ रखना था, नबी की अहलिया के साथ, कि नबी की बीवी पर तोहमत गोया नबी पर तोहमत है, उनकी नबूवत पर बहुत बड़ा इल्जाम आ जाएगा। दूसरी तफसीर बड़ी अजीब है, अल्लामा आलूसी ने इसको लिखा, राजी ने भी इसको लिखा, फरमाया अनफुसिहिम का तर्जुमा उनकी जात के साथ, अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा इल्जाम आता तो तुम क्या करते, तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम आता तो तुमको कैसा लगता, तुम उसके डिफेंस करने की फिक्र करते या नहीं। अगर कोई मुझ पर तोहमत लगाए तो मैं उसकी फिक्र में हो जाता हूं, भाई ये क्या, तो तुमने अपने तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ इसलिए तुम चुपचाप बैठे हो बोल नहीं रहे हो, अगर कोई दुश्मन तुम पर इल्जाम लगा तुम पर क्या गुजरती, तो उम्मुल मोमिनीन पर क्या गुजरती होगी, तो जिस तरह तुम्हें अपना बुरा लगता है तो और मुसलमान का क्यों नहीं लगता। हदीस में आता है जो अपने लिए पसंद करो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, दोनों तफसीर है। कालू हाजा, तुम कह देते ना क्यों नहीं कहा, खामोश बैठे रहे साहब, अल्लाह कितने जलाल में खामोश बैठे रहे, नबी की बीवी के बारे में तुम सुनते रहे ना, हाँ कहा ना कहा, तीसरे ग्रुप को कहा जा रहा है, कह देते हाजा इफ्कुन मुबीन, ये तो खुला झूठ है, क्यों नहीं कहा तुम लोगों ने, क्यों नहीं कहा। और आगे फिर लौला ले आए, ये लौला मुफस्सिरीन फरमाते हैं काश के माने में, विश काश काश, शेख सिराज जी कहते हैं मेरी किताब में 100 जगह से ज्यादा मैंने काश का लफ्ज लिखा है, लौला काश के, काश के, और काश का क्या माना है, काश का माना समझाता है विश शुड, काश के ऐसा हो जाता, काश के आज मछली पक जाती, काश के खाना अच्छा हो जाता, ये काश जो है ना, फरमाया इसका दर्जा हुक्म से भी बड़ा है, एक आदमी हुक्म करे ये करो उससे भी बड़ा काश का दर्जा है, याद रखो क्योंकि काश में मोहब्बत है। फरमाया तुम्हें अगर मोहब्बत होती अपने नबी के साथ, मोहब्बत होती तो उसका दर्जा तो बहुत बड़ा है, तुम उन्हें कहते कि 4 गवाह लाओ, तोहमत के 4 गवाह लाओ, नौला जाओ अली ब्यारबादी शोदा चार गवाह लाओ। सवाल होता है जब ये मसला तो बिल्कुल झूठा ही है, फिर गवाह लाने के बाद क्या होगा? क्या मसला सही हो जाएगा? अगर गवाह ने कह दिया हां तो झूठ है, जिना तो हुआ नहीं, फिर गवाह क्यों मंगवा रहे हैं? फरमाया अल्लाह पाक ने आगे कि मैंने इस सूरत को उतारा है और मैंने इसमें कुछ अहकाम तुम पर फर्ज किए हैं, उसका करना जरूरी है, उनमें से एक हुक्म क्या है? गवाह। जब तुम किसी पर अक्यूज करो तो वो विटनेस होना जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर तुमको पहले, उसको तो बाद में, सबसे पहले तुमको 80 कोड़े मारे जाएंगे। अगर दुनिया में तुमने तोहमत लगाई और इस्लामिक कंट्री नहीं है, किसी मुसलमान औरत पर या किसी मुसलमान मर्द पर तुमने अक्यूज किया तो इस्लामिक कंट्री नहीं है कि तुम्हें 80 कोरे मारे जाएं, तो फिर जहन्नम में तुम्हें 80 कोरे मारे जाएंगे। इतना खतरनाक है ये, समझ में आई बात? तो अगर तुम्हें अपने नबी से मोहब्बत थी तो कह देते भाई लाओ चार गवाह लाओ, क्यों नहीं बोले तुम, चुपचाप क्यों बैठे रहे? हां ना हां, कहा ना ना कहा। मेरे नबी को 1 महीने तक तकलीफ होती रही। और ये भी अजीब बात है, मुफस्सिरीन फरमाते 1 महीने तक इंतजार ताकि अल्लाह देख ले कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या करता है मेरे नबी के साथ। मेरे नबी को पूछना पड़ा, तू क्या कहता है, तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो? खामोश। बाज लोग क्या है, तमाशा देखते हैं, किसी आलिम पर तोहमत आती है, हाँ तमाशा देखते हैं, बैठे बैठे हंसते हैं, मजाक करते हैं। ये बात है, याद रखो, मोमिन के लिए जो आदमी तमाशा देखे उसको भी अल्लाह ने वही बयान फरमाया, उसके लिए भी खामोश में इतने वाले लौला जाऊ अलैहि बिअरबाती शुहदा। फरमाया मेरा, वैसे तो मुझे पता है कि मसला अल्लाह चाहते तो फौरन उतार देते, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, मैंने चार गवाह का हुक्म लगाया है वो भी हो जाता ताकि मेरी बात भी सही हो जाए। लौला जाऊ अलैहि बिअरबाती शुहदा, शहीद गवाह लाते। फइद लम यातू, देखा ना, अगर ये गवाह न ला सके, फौलाइका इंदल्लाह हुमुल काज़िबून, है तो झूठे ही, झूठी तोहमत लगाई है, लेकिन गवाह लाते ताकि अल्लाह का एक कानून, इस्लामिक कानून नाफिज हो जाता। ये अगर गवाह न ला सके, इफ दे कान ब्रिंग द फोर विटनेसेस, देन अल्लाह के नजदीक ये झूठे हैं, हुमुल काज़िबून है, काज़िब है, झूठे। अल्लाह क्या कहते हैं, वलौला फ़ज़लुल्लाह अलैकुम वरहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरा, अगर अल्लाह का तुम पर फजल न होता, अल्लाह की रहमत न होती दुनिया और आखिरत में। ये किनको कहा जा रहा है? हजरत मिस्ताह को। किनको? वो लोग जो फंस गए, सिंपल सादा थे, लेकिन मुनाफिकीन की बात में आ गए, आ गए। हालांकि बद्री साबा है, बदर में थे मिस्ताह को, और मिस्ताह कौन है? मिस्ताह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलेरे भाई है। खलेरे का मतलब समझ आता है, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा और मिस्ताह की मां दोनों बहने हैं। खलेरे, इसको खलेरे कहते हैं, खालाजद भाई, मारी बात। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? खलेरे, खाला जब। तो उनको क्या करते हैं? हर महीना हदिया अपने खर्चा देते थे, गरीब थे मिस्ताह, देते थे। तो मिस्ताह और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला जो शायर रसूल साहब, लेकिन एक ऐसी चीज इसमें तो आज भी ऐसा ही है, मीडिया ने लोगों को खत्म कर दिया, तोहमत लगाना जगह जगह ऐसा है, उस जमाने में तो नहीं था, इस जमाने में बस तोहमत और गीबत इतनी आम हो गई, और ये कबीरा गुनाह है, ये तोबा के बगैर माफी नहीं होता। अगर तोबा नहीं की है और जाकर उसके सामने हुकूक इबाद की माफी नहीं मांगी है तो जहन्नम में जाने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, इसकी सजा यही है। तो मत, बहुत आसान है, सुनी सुनाई बात हम बयान कर देते हैं। किसी ने मुझे कहा कि फूला ऐसा है, बस मैंने कहना शुरू कर दिया व्हाट्सएप पर, मैसेज पर आम कर दिया। और ज्यादातर आप देखो घरों में है? जरा सा कुछ शोहर बात करता, हाँ किसी औरत से तूने बात कर ली आज, तो उसके साथ हो गया फौरन। अब वो बेचारी कोई मसला पूछ रही है, और यही बात शोहर अपनी बीवी पर तोहमत लगा देता है, हालांकि चार गवाह भी नहीं, ना आंखों से देखा है, और शोहर का फोन तो वैसे भी दिन में 10 बार चेक करते रहते हैं, तो बीवी का भी चेक करते रहते हैं। कितनी तूने ऐसा किया। मेरे पास तो हजारों केसेस है, इतनी बात पर, सिर्फ डाउट पर तलाक हो गई, सिर्फ डाउट है उसको। कहीं वर्क पर तू बात करता है, कभी फुला ऐसे फोन किया, किधर हो, यहां पर है फुला जगह में, तो वहां उसकी कोई फ्रेंड हो जिसको देख ली, मेरा हस्बैंड उधर गाड़ी है उधर उसकी। तोहमत ने और झूठ ने इंसानों को तबाह बर्बाद कर दिया, और उसको कोई गुनाह नहीं समझता। ये इल्जाम को, तोहमत को जो घर में 15 बार होता है दिन में, फैमिली में तो बाद में, घर में 15 बार होता है और कोई उसको गुनाह ही नहीं समझता, और दिन में कितने गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह मान वाला हफीज। देखो ना कितनी बड़ी बात है। वलौला फजलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह की रहमत और फजल न होता तो लमस्सकुम फीमा फतुम फीही अजाबुन अजीम, मैं तुम्हें दुनिया में खतरनाक, बहुत खतरनाक अजाब चखाता, अजाब तुम पर आ जाता। एक तोहमत लगाइए लेकिन इतनी खतरनाक है, अगर कोई 10-15 तोहमत लगा दे। इज तलक्कौनहु बिअलसिनतिकुम, जब तुम उसको जबान दर जबान लाने लगे, क्या मतलब इसका, एक ने बयान किया, इसने उसको बयान, इसने उसको बयान, इसको कहते हैं वह तकुलून बिअफवाहिकुम, जबान दर जबान लाने लगे, यानी एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, आज तो कहने का तो व्हाट्सएप से, एक ने व्हाट्सएप किया दूसरे को, दूसरे ने व्हाट्सएप किया तीसरे को, तीसरे ने किया चौथे को। अल्लाह कह रहे देखो इसी बात को, तलक्कौनहु बिअलसिनतिकुम व तकूलून बिअफवाहिकुम मा लैस लकुम, जिसका तुम्हारे पास इल्म नहीं है कि हकीकत में नाउज़ बिल्लाह जिना ऐसा बुरा काम हुआ है, जिसका तुम्हारे पास इल्म नहीं है। इल्म तो कब हो, मैंने उस दिन हदीस सुनाई थी कि एक बोतल हो, बोतल, और बोतल उसमें सुरमा है, और सुरमा में ऐसी एक लकड़ी है उसको अंदर में है, और उससे हम आंख में सुरमा लगाते हैं, इस तरीके से तुमने किसी मर्द को किसी औरत के साथ सोता हुआ देखे और फिर 4 गवाह हो तो तुम्हारी बात है, वरना तो फिर तुम्हें 80 कोरे मारे जाएंगे। ये सख्त मसला कुरान का है, और हमने तो इसको आसान समझ लिया, तोहमत लगा दी, बहुत आसान। अब जितने लोग तोहमत लगाएंगे, मैंने एक को व्हाट्सएप किया, उसने 50 को किया, तो 50 का गुना मुझ पर आएगा, सबके इल्जाम का गुना मुझ पर, आई स्प्रेड इट। इसलिए बहुत सोच समझ कर, एक तो हमारे पास टाइम नहीं तोबा करने का, एक तो हमारा दिल सूख गया है, यानी ऐसा कि रो रो कर पानी खत्म नहीं हुआ, रो रो कर आंसू खत्म नहीं, जैसे आयशा फरमाती है मैं इतना रोई एक महीना, इतना रोई अब तो मेरी आंख में एक कतरा तक नहीं था कि मैं रोऊं। तो हमारे पास तो वो रोने का आंसू नहीं, हमारे दिल ही खत्म हो चुके हैं कि रोना तो आता नहीं, तो तोबा भी करते नहीं, कैसे अल्लाह के यहां माफी होगी। इसलिए बहुत सोच समझ कर, इससे बेहतर आदमी सो जावे तो अच्छा है कि मीडिया पर बैठा रहा और बस पूरा दिन। क्यों ये सब बातें क्यों हो रही है, इसलिए कि अब घर में कोई कामकाज नहीं है, है कामकाज। पहले तो घर का झाड़ू देना होता था, फिर पानी छिड़कना, अब तो रोटी आटा बनाने के लिए भी मशीन है,
कपड़े ढोने का भी मशीन है, कपड़े सुखाने का भी मशीन है, हर चीज मशीन से चलती है। अब बेचारे बैठे बैठे क्या करेंगे, फोन ही में तो बैठेंगे, कहां बैठेंगे, और फोन ही में तो गीबत चलेगी, और फोन ही से तो इल्जाम लगेगा, फोन ही से तो गुनाह होते हैं। लेकिन इंसान सोचता नहीं कि घर में बैठे तो हजार गुना कर रही है, तो और हजार गुना कर रहा है, तो कितनी बार शैतान तेरे साथ आया हुआ है, कितने गुना किए हुए। अल्लाह कह रहे हैं इज तलक कौ न हो, अल्लाह क्या कह रहे हैं, वो तहसबू न भाई है ना, तुम इल्जाम लगाने को आसान समझते हो, है ना, क्योंकि बोल दिया फुला ऐसा है, फुला ऐसा है, कितने इल्जाम लगाए, साहबा पर लगाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा पर लगाया, जैसे मैंने सुनाया था आपको उस दिन, सहाबा पर लगाया। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, नाउज़ुबिल्लाह काफिर का, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम अहमद बिन, कोई बाकी नहीं, कोई बाकी नहीं। बड़े बड़े उलमा सुलहा पर भी तोहमतें लगाई, फरमाया वतहसबून भाई ना, तुम ख्याल करते हो कि इल्जाम लगाना हय्यिन आसान है, यानी बोल दो खत्म, वहुवा इंदल्लाहि अजीम, अल्लाह क्या कह रहे हैं, तेरे लिए तो आसान है, अल्लाह के यहां तो बड़ा खतरनाक है ये। और अल्लाह जिसको अजीम कहे ना, जिसने दुनिया को कलील कहा, जिसने इतनी बड़ी दुनिया को कलील कहा, कलील, और वो अल्लाह अजीम कह दे तो कितना बड़ा गुनाह होगा। वो अल्लाह अगर अजीम कह दे तो कितना बड़ा गुनाह होगा, वह इंदल्लाह साफ है, ये गुनाह इल्जाम का अल्लाह के नजदीक बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है। वलौला, फिर लाए इन समय तुम हो, काश के जब तुमने इसको सुना तो कुल तुम कह देते, मा यकून लना अन नतकल्लम, हम ऐसे हमारे सामने ऐसी बात मत करो, हम तो मजे लेकर सुनते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और, अच्छा अच्छा एक घंटा लगा दिया इसने। देखो ये चौथे साहबा के बारे में है, चौथा ग्रुप जो है जिन्होंने कहा ऐसी बात मत करो, जाओ झूठे, उनका जिक्र यहां पर है। वलौला, जबकि तुमने उसको सुना तुम कह देते, ये सॉरी उन लोगों के बारे में जो खामोश बैठे थे, जो क्या है, खामोश बैठे थे, तुमने क्यों नहीं कहा हमारे सामने ये बात मत करो, सुभानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह की जात पाक है, ये तो बड़ी बहतान है। देखो इसकी भी दो तफसीर है, एक तफसीर तो ये है अल्लाह ही एक ऐसी जात है जो पाक है, इंसान है, कुछ गुना हो जाता है, समझ में आई बात, लेकिन यहां अल्लाह को सामने रखकर क्या कहा, अल्लाह तेरी जात पाक है और ये बहुत बड़ा बहतान है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये कह देते, एक तफसीर तो ये है। दूसरी तफसीर ये है सुबहानका हाजा बहतानुन अज़ीम, अल्लाह की जात को सामने रखकर तुझे कहता हूं कि ये हजरत आयशा पर बहतान है, सुबहानक, कह रहे वलौला इज समय, तुमने क्यों नहीं कहा, अल्लाह कह रहे तुम क्यों खामोश बैठे रहे, भाई ऐसी बात मत करो, ये मेरे सामने से बकवास ही है, ये झूठ है, क्यों खामोश बैठे रहे, यानी अल्लाह ताला हजरत आयशा के बारे में कितनी बड़ी बातें बयान फरमा रहे हैं, कितनी बड़ी बात, इतनी सारी आयत उनके लिए है। यईज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, सुन लो अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह तुमको नसीहत कर रहा है, तऊदू लिमिस्लिही अबदा, दोबारा ऐसा मत करना, चलो हो इस बार तो हो गया, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करना, लेकिन के लिए जो खामोश बैठे रहे, जो फंस गए, जो साहबा, मालूम होता है अल्लाह ने सारे साहबा को माफ कर दिया है, ऐसा हमेशा न करना, वो भी क्या, अबदा, इस जैसा काम हमेशा न करना, ये सिर्फ साहबा के लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए कि किसी पर तोहमत लगाने का काम कयामत तक न करना, ये बहुत खतरनाक गुनाह है। क्यों, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हारे अंदर में ईमान है, इन कुन तुम मोमिनीन, तो इल्जाम किसी पर न लगाना, ये कहना चाहते हैं मोमिन वो होता है जो किसी पर तोहमत नहीं लगाता। समझ नहीं बात, यही कह रहे हैं मैं अल्लाह तुम्हें नसीहत करता हूं अगर तुम मोमिन हो तो फिर कभी इस किस्म की बात न करना, इस किस्म के गुनाह न करना। वही उबैनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला तुम्हारे सामने ये सारे अहकाम बयान फरमा रहे हैं। वल्लाहु अलीमुल हकीम, अल्लाह जानता है हिकमत वाला है कौन क्या कर रहा है और क्या नसीहत करनी है, अल्लाह सबको पता है। पता मुझे पता है, मैंने तुम्हें सारी बातें या तो पिछली बातों की तरफ इशारा किया या आगे कुछ और बातें आ रही है उसकी तरफ और इशारा कर रहे हैं। अभी अल-खबीसात वल-खबीसीन वगैरह वगैरह आती है बातें इसकी तरफ। इन्नल्लज़ीन युहिब्बूना, अब सुनिए जो आजकल लोग करते हैं, इन्नल्लज़ीन युहिब्बूना जो लोग पसंद करते हैं, अम तशी अल-फाहिशा फिल्लज़ीन आमनू, मुसलमान ग्रुप के अंदर में, मुसलमानों के अंदर में फाहिश बातें फैलाते हैं, किसी के जिना की, किसी के शराब की, किसी की चोरी की, किसी की क्या और किसी की क्या, कैसी कैसी तोहमत लगाते हैं। फरमाया जो लोग ईमान वालों में ये फाहिश बातें जो फैलाते हैं, बदकारी की बातें फैलाते हैं, अल्लाह क्या कह रहे हैं, लहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए बड़ा खतरनाक अजाब। अलीम का माना क्या है, पेनफुल पनिशमेंट। क्या कह रहे हैं, और पेनफुल पनिशमेंट कहां होगा, जहन्नम में होगा। सिर्फ जहन्नम में नहीं, दुनिया में भी होगा। अल्लाह कह रहे हैं लहुम अजाबुन अलीम फिर दुनिया वला खरा, सुन लो तोहमत लगाएंगे तो चाहे हदीस में आता है तुम घर में बैठे रहो दरवाजा बंद करके, तुमने किसी पर इल्जाम लगाया है तो तुम्हारे बंद दरवाजे में अल्लाह तुमको जलील करेगा। सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की, बंद दरवाजे में आदमी बैठा है कुछ नहीं करा चुपचाप बैठा है, अल्लाह उसको वहां भी जलील करेगा। ये दुनिया का अजाब है, कब्र का तो अलग है आखिरत का अलग है। फरमाया वल्लाहु यअलमु وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کیا عذاب ہوگا, اللہ کو پتہ ہے, اللہ کو سب خبر ہے۔ آخری آیت وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اللہ کا تم پر رحمت اور فضل نہ ہوتا, پھر اللہ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالی شفقت رحمت والا ہے, ورنہ ایک ایک تمہارے گناہ پر کتنا عذاب دیتا میں, تم ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے توبہ کر لو آئندہ ایسا کام نہ کرو, کسی پر تہمت نہ لگاؤ, یہ بہت بڑا گناہ۔ حدیث میں ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی آدمی مسلمان مر گیا آج تم اس پر تہمت لگاتے ہو تو بھی تمہارے 80 سال کے نیکی سب ختم ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی۔ زندہ تو زندہ, مردوں پر بھی نہیں, مردوں پر بھی تہمت نہیں, ورنہ زندگی بھر کے نیک اعمال کیا ہوں گے, ختم ہو جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس آدمی محنت کرتا رہا ملا کچھ نہیں, سب ختم ہو گیا۔ اس لیے خاموشی بہت بڑی بات ہے, چپ, 100 بات کی ایک بات کیا, چپ۔ اور اپنے آج کل جو میڈیا ہے اس کو صحیح جگہ استعمال کرو, غلط جگہ استعمال نہ کرو۔ اگر تم پر کوئی واٹس ایپ کر دے کسی کے بارے میں, بس چپ۔ کوئی مجھے مارنے والا ہے اگر میں آج آگے نہ پھیلاؤں تو, وہ کہتے ہیں اس کو آگے پھیلاؤ تمہارے گھر میں اتنی برکت ہوگی, میں کیوں کروں بھائی, تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ بات صحیح ہے, میں نے 5-10 کو بھیج دیا, تم اتنوں کو بھیجو گے تو اتنی برکت ہوگی۔ آج کل یہ سب جھوٹ جھوٹ ہے, اس کو نہ پھیلایا کرو, بہتر یہ ہے قرآن پڑھو تسبیح پڑھو, کچھ نہیں سو جاؤ, کام کی بات, کوئی بیان سنو, اچھا بیان سنو, اچھی نصیحتیں سنو, پڑھا ہے, کوئی ضروری ہے کہ یہی سنے؟ گناہوں کی بات سنو کہ تہمت کا کیا گناہ ہے, غیبت کا کیا گناہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فرمایا عائشہ تو نے اشارہ کیا نا ایسا, मैं सलमा के लिए ऐसा ऐसे शॉर्टकट आ रही है, ऐसा 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 किया, सिर्फ बोला नहीं ऐसा, शी इज कमिंग। फरमा ये तेरा जुमला इतना खतरनाक है कि सातों समंदर में डाल दे पानी कड़वा हो जाएगा। अगर कोई जबान से बोले तो क्या होगा, बहुत आसान है आज किसी को क्या कह दिया, बोल दिया, मजमे में उसको जलील कर दिया, लोगों के सामने जलील कर दिया, जबकि चारे में कुछ भी नहीं होता। किसी की हाई लग जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। इसलिए न मुर्दों पर, न मुर्दों के लिए बोला करो, फूला मर गया वो ऐसा था, अब मर गया चला गया, अब क्या तुझे कोई मारने वाला, तू खामोश रहे तो मर गया खत्म। अब उसके बारे में तू, वो तो मर गया, क्या मालूम अल्लाह के उसकी मगफिरत हो गई है, लेकिन तू उसका गुनाह अपने ऊपर ले रहा है, अब तुम उससे माफी नहीं मांग सकते, वो तो दुनिया से चला गया। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दों को बुरी बुरी बातों से याद न किया करो। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत, कुरान की बातों को समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आपने देखा हजरत आयशा के बारे में, सहाबा पर कितने अल्लाह ताला जलाल में है, मैं और आप तो कुछ भी नहीं है, एक बात पर कि अल्लाह ने कुरान में ता कयामत उतार दिया, उन लोगों का जिक्र भी जिन्होंने इन पर तोहमत लगाई उनका भी, और उन पर जो पाक दामन थी उनका भी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सुबह में शाम में अल्लाह से एक दुआ जरूर किया करो, या मुकल्लिब अल-कुलूब सब्बित कुलूबन अला दीनिक, व या मुसर्रिफ अल-कुलूब सर्रिफ कुलूबन अला ताअतिक। अल्लाह ईमान पर बाकी रखना और हमारे दिल को ईमान की तरफ फेर दे, नेक और हिदायत वाले काम पर फेर दे, ताकि हम गुनाह न करें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا قديم الاحسان اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں اللہ معاف کر دے اللہ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں معاف کر دے اللہ تیرے قران کی محبت میں بیٹھے ہیں کیا کیا عجیب عجیب باتیں اللہ تو نے قران میں بیان فرمائی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے عمل کی توفیق عطا اللہ قرآن سے محبت اور وابستگی نصیب فرما یہ مجمع تیرے قرآن کی محبت میں آیا ہوا ہے تیری قرآن کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے اللہ سب کو قبول فرما اور اللہ اس مجلس کی برکت سے ہماری اعلی اولاد کو بھی حافظ قرآن بنا اے اللہ حافظ قرآن بنا عالم قرآن بنا دائی قرآن بنا عاشق قرآن بنا ہم سب کو ہماری اعلی اولاد کو ہماری نسلوں میں اے اللہ قرآن کی محبت پیدا فرما تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت پیدا فرما اللہ دنیا بھی بنا دے قبر بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے جہنم سے بچا لے اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہماری نسلوں میں نیک اور صالحین اولیاء کاملین پیدا فرما اولیاء کاملین پیدا فرما اللہ میں نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ پتا ہے اللہ جو کچھ ہے اللہ تو کہلواتا ہے اللہ تو اسے قبول فرما اسے قبول فرما مرتے دم تک دین کا کام کرتے رہے اور کرتے کرتے تیرے پاس آ جائیں اے اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما اے اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اس مجمع میں گھروں میں جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما اس قرآن کی برکت سے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ان کی اولاد اور ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں اور بوڑھے لوگ سب کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما انہیں صبر جمیل نصیب فرما انہیں ثابت قدمی نصیب فرما اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں اللہ سکون نصیب فرما اللہ آنے والے فتنوں سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آنے والے فتنوں سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آنے والے فتنوں سے پورے پورے کنٹری کے مساجد مکاتب مدارس کی حفاظت فرمائے علماء صلحاء مرکزوں کی حفاظت فرمائے یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے اللہ دشمن بہت گندے پلان کر رہے ہیں اسلام کے خلاف مسلمان کے خلاف اللہ ان سب سے
اے اللہ حفاظت فرما. اللہ ان کے حصے میں اگر ایمان لکھا ہے تو ایمان نصیب فرما. اللہ ایمان لکھا ہے تو ایمان سے مالا مال فرما. انہیں بھی ہمارا جنتی بھائی بنا دے, ایمانی بھائی بنا دے. اے اللہ اگر ایمان نہیں لکھا ہے تو اے اللہ ان کے جرموں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں ختم فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان آمین کہنے والوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.